Welcome to First Post Masterclass, our podcast series where elite athletes break down their craft for you. My name is Ujwal Singh and joining me today is the dashing India hockey star, Rupinder Pal Singh. A 2014 Asian Games gold medalist, Rupinder is considered as one of the best track flickers in the world. Today he would explain the art of track flicking to us.
तो ठीक है, हॉकी पे स्टार्ट करता हूँ मैं। रुपिंदर, आपने आपने आई थिंक इंडिया खेलना आपने 2010 में स्टार्ट करा था, लेकिन सीनियर इंडिया 2010 में स्टार्ट करा था, लेकिन उससे पहले की बात आप बता सकते हो कि कौन से एज से आपने मतलब हॉकी खेलना स्टार्ट करा? मुझे जहां तक पता है शायद आपने चंडीगढ़ हॉकी अकेडमी में भी गए थे, बट कब से एग्जैक्टली आपने खेलना स्टार्ट करा था और हॉकी क्यों स्टार्ट करा था उसके बारे में थोड़ा बोले।
आई थिंक आई वाज लाइक 8 और 9 इयर्स ओल्ड।
ओके,
तो यहाँ पे पहले एक ना फूलपुर में एक बाबा शेरशाह वाली अकेडमी थी।
अच्छा जी।
तो ऐसे था कि घर से खेलने आओ, तो एक हमारे वो थे हरदीप सिंह ढिल्लो, आई जी थे वहाँ पर ना, डी आई जी पंजाब पुलिस में। तो तब उनकी पोस्टिंग वहीं पे थी, तो शाम को वो भी वहीं पे खेलने आते थे। तो उन्होंने एक अकेडमी स्टार्ट की थी बाबा शेरशाह, टीचर से खेलने आते थे कई बच्चे।
अच्छा।
तो मंथली बस ऐसे था कि नॉर्मल उनको एक डीसीबी का डब्बा या ट्रेनिंग मैक्स ऐसे देते थे, तभी गेट को छोटे छोटे पेज था ना, तभी सिंपल ये था। तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम खेला हूँ, फिर बाद में मैं फ्रीकोट आ गया ट्रेनिंग साथ ही। फ्रीकोट मैंने अपना फ्रीकोट में हॉकी खेली, फिर बाद में चंडीगढ़ सिलेक्शन होगी मेरी जब मैं 11-12 साल का था। ठीक है
जी।
तो चंडीगढ़ मेन जो मेरा प्रोफेशनल करियर चंडीगढ़ स्टार्ट हुआ जो था ना, चंडीगढ़ में दलवीर सिंह बाजवा जी कोच थे वहाँ पे नगर में, एंड उनके साथ कोच थे ओके अलावा। ठीक है जी। तो फिर वहीं से 6 साल वहीं पे स्टार्टिंग चंडीगढ़ से स्कूलिंग है मेरी। फिर 2006 में मेरा फर्स्ट जूनियर कैंप में अंडर 18 कैंप में नाम आया था बॉम्बे में। तो फिर बाद में 3 साल जूनियर खेला हूँ। फिर 2008 में 2007 में सॉरी हमारा तब दुर्गा सिंह जी एज अ कोच आए थे ड्रेस लेकर।
अच्छा जी।
दुर्गाव में।
अंजी अंजी।
तो वो कोचिंग देने के लिए आए थे स्पेशल ड्रेस लेकर कोचिंग के लिए, तब मैंने ड्रेस लेकर स्टार्टिंग की थी। ठीक है।
अच्छा जी।
जब वो आए वहाँ पे तब उन्होंने मुझे ड्रेस लेकर स्टार्ट करवाई मेरी।
अच्छा।
पठानिया जी, रमेश पठानिया कोच थे तब, और उनके साथ युवराज सिंह जी आए वहाँ पे, फिर ट्रेनिंग ड्रेस लेकर स्टार्ट की मैंने 2007 में। एंड देन 2 साल जूनियर कैंप में रहा हूँ। फिर 2009 में मैं अपना क्या नाम अपना फिर जूनियर कैंप में नहीं रखा मैं, 2009 में फिर डोमेस्टिक खेला हूँ। ठीक है ना।
अच्छा।
कोई ना जूनियर प्रोग्राम में था ना सीनियर में था, फिर 1 साल डोमेस्टिक हॉकी खेला हूँ। फिर 2010 मार्च में सॉरी मुझे रिकॉल आया सीनियर कैंप के लिए, तब कोच था जोश ब्रासा कोच था। ठीक है।
ओके जी।
तो फिर तभी 2010 में जब हॉकी कैंप में गया, तब उस जो कैंप लगा था वो लाशा टूर्नामेंट के लिए लगा था जो मलेशिया में होता है। ठीक है।
ओके जी।
तो फिर उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी लाशा, फर्स्ट मेरा कैंप था तो फर्स्ट टूर्नामेंट में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो
तो ड्रैग फ्लिकिंग मतलब वैसे तो हॉकी में काफी मतलब एक अट्रैक्टिव मतलब पार्ट है हॉकी का, बट सारे भी मतलब करते भी नहीं है, तो आपने मतलब ऐसा कैसे इंटरेस्ट ले लिया और उसके बारे में आपको क्या इतना अच्छा लगा जो आपने ड्रैग फ्लिकिंग पर?
2004 में जूनियर कैंप लगा था चंडीगढ़ में।
हाँ जी।
2010 में। ठीक है जी।
हाँ जी।
तो तब उस कैंप में ना संदीप सिंह हो गया जूनियर कैंप में, तो जूनियर कैंप वहाँ पे, लेकिन उसी टाइम सीनियर कैंप भी लगा था, युवराज सिंह जी अपना इंजरी के बाद कैंप में आए थे, 2004-5 की बात है।
अच्छा।
लेकिन तब क्लेरेंस लोबो जी कोच थे जूनियर टीम के। ठीक है जी। लेकिन युवराज सीनियर में था, वो बाद की बात बताता हूँ। ठीक है। लेकिन 2004 में जब आए थे कैंप में, तो तब क्लेरेंस लोबो और संदीप भी मेरे को उन्होंने ही बोला ड्रैग, लेकिन क्लेरेंस लोबो ने मेरे को बोला ना कि ड्रैग क्लिक करनी चाहिए तेरे को ना। तो मैंने तब थोड़ी देर की, मेरे बैग में पेन हो रहा है, तो मैंने फिर छोड़ दी, मेरे जिससे हो नहीं रहा था। ठीक है। मेरे को लगा बहुत टफ चीज है, मेरे से नहीं होगी, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है। एक बार फिर से 2005 में 4 की बात या उसी समर पर ऐसा कुछ था टाइम, तो तब युवराज सिंह सीनियर टीम में आए, तब ऑफकोर्स लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इतने बड़े प्लेयर्स को मिल रहे हैं ना, जैसे युवराज सिंह या बलबीर ढिल्लो, गगनजीत सिंह, जितने भी सब नामी प्लेयर थे, तो सभी जनमानी वहाँ पे थे, सभी वहाँ पे थे, हमारे हम ऊपर खड़े हुए अपने, हमारे रूम ऊपर थे, उनके रूम नीचे थे, ऐसे था हमारे हौसले में रुकन बच्चों, ठीक है वो तो हमें उनको रोज देखना है, काफी एक इंस्पायरिंग खाना भी उनको उनको देख रहे हैं सब कुछ करके, तो लेकिन तब भी मन हुआ मैं डायरेक्टली करूँ, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं करा। 2006 में मैं जब जूनियर कैंप में कॉल आया मेरे को और कैंप, तब भी मेरे को रमेश पठानी ने बड़ा जोर लगाया अभी हम तू डायरेक्टली स्टार्ट भी करनी चाहिए ना बिल्कुल, तब भी मैंने भी बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा था, ऐसा था कि पूछ नहीं जा रही लगी है क्या करूँगा। तो फिर बाद में जब 2007 में जब यूनिवर्सिटी आए वहाँ पे, तब भी मैंने छोड़ने की कोशिश की भी ना करूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे था कि सिर पे लग जाते थे वो अपने मेरे तो कर तो धीरे धीरे ट्रेनिंग के बाद अपने आप वो प्रोफेशन आती गई थोड़ी थोड़ी, है ना, जो भी कोर्स आती गई करता गया उसमें। हाँ जी
जरूर। अच्छा तो एक चीज मैं आपसे मतलब पूछूंगा, जैसे आप बोल रहे हो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग आपने करी, फिर करने का मन नहीं था, धीरे धीरे फिर करते करते आप अब तो अब सभी जानते हैं कि अब
ट्रेनिंग करने का मन, दूसरी ट्रेनिंग सब कुछ
नहीं, नहीं मतलब हाँ ड्रैग फ्लिक की बात कर रहा हूँ। हाँ
एक स्किल ऐसा है कि उसमें सारी बॉडी आपकी इन्वॉल्व है, उस एज में हो कि आपसे कोई मसला इतने ज्यादा डेवलप नहीं होगा, ठीक है, आप 13-14 साल के हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको उन मसल के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप को अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज इंजरी आएंगी, ठीक है। तो तब मेरे को लगता है यार भाई मेरे बैक में कभी पेन हो रहा है हल्का हल्का, फिर कभी ग्रोइंग में पेन हो रहा है, तो फिर मैं छोड़ रहा था उसको बार बार, ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर रहा था इसलिए। फिर जब 2007 तब थोड़े बहुत मसल मेरे डेवलप हो गए थे, फिर साथ साथ में जिम ट्रेनिंग करवा रहे हैं हमें थोड़ा थोड़ा, ट्रेनिंग करवा रहे थे, कब वो करना है प्रॉपर उन्होंने देखा वो टाइम ना अपना कैसे करना है कैसे नहीं।
अच्छा जी,
तो उससे काफी हेल्प हुआ
जरूर। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो इनिशियल टाइम में जब आप रेगुलर ड्रैग फ्लिकिंग की अगर जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक संदीप सिंह का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में उनको इनिशियल टाइम में वो एक दिन में 400-500 फ्लिक्स मारते थे, वो शुरू की बात कर रहा हूँ मतलब अब नहीं, जब वो बोलते थे स्टार्टिंग में जब वो 400-500 मारते थे, अब बोलते हैं कि ये मैं पुरानी इंटरव्यू है, लेकिन फिर भी अभी वो काफी इंडिया खेल चुके थे, तब उन्होंने कहा था कि अब मैं 40-50 मारता हूँ, पहले 400-500 स्टार्टिंग में मारता था इनिशियल। तो आपका भी कुछ ऐसा नंबर रहता था कुछ आप ज्यादा मारते थे या दिन में कितने घंटे लगते?
काउंट नहीं किया, लेकिन ऐसा था कि जब ट्रेनिंग 24 में जब ट्रेनिंग होती थी हमारी एटलीस्ट लाइक वो एक घंटा वन एंड हाफ आवर इतना हमारी ट्रेनिंग स्टार्टिंग होती थी इतनी स्पेशल 24 के ऊपर ही,
उसमें
कभी ऐसा नहीं काउंट किया हमने, लेकिन हम जब स्टार्ट करते हो तो इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं ना, जो डायरेक्टली का वो सारा टेक्निक का ही काम है, ऐसा नहीं है कि आपके उसमें मसल बड़े चाहिए या फिर आपने आपके पूरे है ना प्रॉपर बाइसेप चाहिए, वो सारा टेक्निक आती है, और जब बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे उतना आप ज्यादा अच्छा डायरेक्टली करेंगे।
तो ये जो आपने जो कहा ना कि स्टार्टिंग में बेसिक्स के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, तो वो बेसिक्स के बारे में थोड़ा आप समझा सकते हैं क्या क्या बेसिक्स है उसके और किस तरह से काम करते हैं?
बेसिक्स में ऐसे है कि आपका फुटवर्क काफी इम्पोर्टेंट है उसमें ना, आप कैसे आप अप्रोच कैसे कर रहे हो बॉल के ऊपर, बॉल में जो कॉम्बिनेशन है कनेक्शन है बॉल और हॉकी का, बॉल को शाफ्ट के ऊपर लेके आना है, फिर बाद में जब छोड़ना है उसको प्रॉपर ड्राइव होना चाहिए बॉल, ठीक है, एंड एंड में जब आप बॉल रिलीज कर रहे हो तब आपकी हिप जो है वहाँ पे लाइक प्रॉपर एक जर्क होना चाहिए, फिर मूवमेंट जो है आपकी बॉडी की वो काफी चीजें उसमें इन्वॉल्व है।
तो अगर मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि अब तो आपको काफी टाइम हो गया, आपने उसमें नाम भी कमा लिया ड्रैग फ्लिकिंग में काफी, अगर मैं आपको पूछूंगा कि अगर रुपिंदर पाल के लिए एक परफेक्ट ड्रैग फ्लिक क्या है, तो उसको आप कुछ बता एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए एक परफेक्ट ड्रैग फ्लिक क्या होता है?
मेरे लिए परफेक्ट ड्रैग फ्लिक यही है कि आप जो एक तो टेक्निक होगी, ठीक है, आपकी जो भी है जो फील है एक ना हॉकी और बॉल का फील है एक प्रॉपर, जब आप अगर आप गोल पोस्ट के ऊपर नहीं भी देख रहे ना तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो मेरा जो कनेक्शन फील है हॉकी का और बॉल का मेरे को तभी आदत हो तभी पता चले कि मेरी डायरेक्टली कितनी पोस्ट गई और कितना भी कौन से एंगल पे गई है, और आई थिंक वो एक टेक्निक की बात सारी देखा जाए तो। और दूसरा ये है कि कभी भी ड्रैग फ्लिक परफेक्ट ड्रैग फ्लिक ये है कि कभी भी टारगेट मिस नहीं होना चाहिए
जरूर ओके
क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ड्रैग फ्लिक कभी जो बॉल जो है वो रोल होता है ठीक है जब बॉल रिलीज होता है तो स्विंग होता है बॉल ठीक है तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि गोलकीपर के कभी ग्लव्स पे लग के जा रहा है या फिर पैर पे लग के जा रहा है ना बोलते हैं कि गोलकीपर ने यहाँ से गोल खा लिया या ऐसे खा लिया लेकिन वो सबसे डिफिकल्ट बॉल होती है क्योंकि बॉल स्विंग हो रही है जैसे ही टच होती है तो वो बॉल बिल्कुल ही स्विंग होके कहीं और अपनी डायरेक्शन ले लेती है ना तो कभी वो गोल पोस्ट में चले जाती है वो तो परफेक्ट मेरे लिए यही है टेक्निक होगी आपकी जो कनेक्शन है बॉल एंड वो सारा और फिर टारगेट जो आप अपना टारगेट चूज कर रहे हो उसके ऊपर टारगेट पे जाना चाहिए बॉल
जरूर एक एक चीज मैं पूछूंगा
एंड ऑफ कोर्स गोल होगा तो वो तो डबल परफेक्ट होगा ना
तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये आप जो ड्रैग फ्लिकिंग की जब आप ये पेनल्टी कॉर्नर की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जरूर आप फ्लिकर हो गए पुशर भी है स्टॉपर भी है तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह की रहती है मतलब पुशर स्टॉपर और फ्लिकर हमेशा साथ ही ट्रेन ही करते हैं कि आपकी फ्लिक की भी ट्रेनिंग सिर्फ अलग से रहती है उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा हल्का कुछ बता सकते हो
उसके ऊपर ऐसे अगर आप किस दिन आप बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हो ठीक है तो मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ ठीक है अगर मुझे पता है मैं बेसिक्स काम करूंगा अभी जैसे मैं हॉकी अभी मैं 2-3 महीने हॉकी में हमने खेला ठीक है मैं मुझे वापस जाऊंगा तो मुझे अकेले का ट्रेनिंग करना पड़ेगा ठीक है कुछ लाइक मे बी हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपना बेसिक्स ट्रेनिंग करना पड़ेगा फिर बाद में 1-2 हफ्ते ऐसे करना पड़ेगा फिर स्लोली स्लोली हम कोशिश करेंगे कि उनको अपना 2 वीक बेसिक्स के ऊपर सो आपके मसल जो है अभी ड्रैफिक के लिए रेडी हो जाए ठीक है अदरवाइज अगर सीधे मैं 100% जाके मैं करूंगा तो मेरे बैक शोर होगा ग्रोइन शोर होगा लाइक ऑलमोस्ट हैमस्ट्रिंग सभी शोर होंगे ठीक है तो उसको लाइक बॉडी को अडाप्ट करवाने के लिए मुझे पहले बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और रिदम में आने के लिए बेसिक्स करने पड़ेंगे लेकिन जब हम पूरा टीम के साथ करेंगे तो फिर हाँ फिर एट द एंड ऐसे जैसे थोड़ा सा रिदम आता रहेगा हमें फिर उनको हम अपना पुशर और स्टॉपर को भी हम साथ में अटैच करेंगे इंक्लूड करेंगे क्योंकि एट द एंड उनकी बॉल स्पीड जो इंजेक्टर जो बॉल पुश कर रहा है उसकी बॉल स्पीड जो है फिर बाद बॉल रोकना ये सारा एक कनेक्शन है तीनों का एक देखा जाए तो एक क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन है तीनों का बॉल कितनी फास्ट आ रहा है देन अकॉर्डिंगली आई विल अप्रोच टू द बॉल राइट
जरूर अच्छा मैं अभी सर थोड़ी सी टेक्निक के बारे में आपको पूछूंगा तो मैं समझ सकता हूँ फोन पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन क्या करें अभी तो ऑप्शन भी हमारे पास ज्यादा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपसे पॉसिबल हो आप उस तरह से मुझे बेस्ट तरीके से जैसा हो वैसा समझाए बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ जब फ्लिकर जब आप ड्रैग करता है तो आपका क्या है कि आप एक बेंड पोजिशन में रहते हैं और आपका जो पेल्विक है आपका कोर है वो काफी ट्विस्ट करना पड़ता है आपको उसमें जब आप ड्रैग करते हैं तो उस प्रोसेस के बारे में जो है आपके पेल्विक और ये जो कोर का जो ट्विस्टिंग का प्रोसेस है उसके बारे में आप थोड़ा समझा सकते हैं उस तरह उस पर कैसा काम होता है और जब आप ट्विस्ट करते हैं तो उसमें एक ये रहता होगा एक एंगल रहता होगा कि इससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि मुझे लगता है कि ड्रैग का भी एंगल उसके हिसाब से डिसाइड होता होगा क्योंकि ज्यादा ट्विस्ट कर रहे हैं तो हाँ जी
हाँ जी नहीं वो सारा जो एंगल का होता है वो सारा आपके हैंड कोऑर्डिनेशन है हैंड और पॉकेट स्टिक का जो आप एंगल दे रहे हो
जरूर
वो आपने कितनी बॉल ड्राइव करनी है और तब वो बॉल छोड़नी है बॉल ठीक है रिलीज करनी है तब
अच्छा
तो सारा हॉकी का बॉल का कोऑर्डिनेशन है लेकिन जो इसका है इसका आपका प्रॉपर एक जितनी आपकी जितनी लाइक जितने ज्यादा जर्क करोगे जितनी पावर लेके आओगे हिप से उतनी आपकी हॉकी पावर आएगी उसमें बॉल में भी ठीक है और जो पेल्विक बोन है ऑफकोर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फिर बाद में रोटेशन की अच्छी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको सो जब आप अगर आप जिम में रोटेशन के ऊपर काम कर रहे हो पेल्विक के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स ऑन द फील्ड आपको ऐसी आएगी आपकी जर्क ज्यादा आएगी पावर ज्यादा आएगी यही है कि जैसे नॉर्मली मैं अगर रोटेशन में जाऊंगा तो जैसे मेरा जो जो फर्स्ट स्टेप है जो मैं पेशेंट लेता हूँ ठीक है जैसे बीच में आपको देखा होगा तो बॉल के आगे से स्टेप लेते हैं ठीक है तो मेरा स्टेप मैं फर्स्ट पेशेंट लेता हूँ एंड देन लाइक फर्स्ट लेफ्ट से लेके फिर पेशेंट से लेके फिर देन आगे मूव करता हूँ मैं ऐसे होता है कि वो आगे से स्टेप लेके फिर वो सीधा मूव करते हैं लेकिन हेड बैल ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किधर से क्या कर रहे हैं
अच्छा तो मैं एक एक चीज आपको, वो पैरों की आप बात कर रहे थे तो पैरों पे ही बात करना चाहता हूँ कि जो आप जैसे लेफ्ट का आप बोल रहे हो, तो जो आप जो पहले पैर निकालते हैं उसमें भी हम ड्रैगफ्लिक्स का हमने देखा है जो पोजीशन वो बना के रखते हैं, स्टॉपर जब स्टॉप करेगा तो फ्रंट लेग जैसे निकाल के रखा है, कई लोग नी नी बेंड करके रखते हैं, एक बेस बना के रखते हैं अपना स्टेबल रखने के लिए।
स्टॉपर्स
हाँ
स्टॉपर्स
स्टॉपर नहीं,
ओके
फ्लिकर,
ठीक
फ्लिकर फ्लिकर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लिक सिर्फ फ्लिकर की बात कर रहा हूँ। तो हाँ हाँ
है ठीक है, जब लोग खड़े होते हैं ओके, जब
हाँ
बॉल
हाँ
में पहुंच
हाँ
कर रहे हैं तब दूसरा है
जरूर
ना, ठीक
जरूर,
है
अप्रोच
ठीक
करने के लिए। तो वो पैर के इस्तेमाल के बारे में आप थोड़ी बात करेंगे, नी और फ्रंट लेग कितना कितना निकालते हैं, कुछ एक आपका अंदाजा रहता है
है।
कितना बाहर
बॉल
रखना है फ्रंट लेग और नी कैसे इस्तेमाल करना। हाँ जी,
बॉल के ऊपर आने के बाद दूसरे, बॉल से पहले जब
नहीं
आप
नहीं
खड़े
नहीं
हो
अप्रोच, जैसे जैसे स्टॉपर के पास बॉल आ रही है तो आप फिर आपके एक मोमेंटम आप जनरेट करोगे ना फिर।
वो इतना, वो सोना हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है ना,
जरूर
जैसे
जरूर।
मैं 4-5 स्टेप पीछे से आता हूँ ठीक है, अगर आप कौन ग्रेलो को देखोगे वो बिल्कुल 2 स्टेप से आता है ना, एक स्टेप लेके मारता है,
हाँ जी
तो हर किसी का वो अपना अप्रोच जो बॉल के ऊपर करना वो हर किसी का अपना अपना है ठीक है,
जरूर। हाँ जी
तो
जी
उसमें वो मैटर नहीं करता। जो जो ड्राइव स्लिप में जो मैटर करता है वो है जब आपने बॉल हॉकी के ऊपर ले ली ठीक है, तब जो आपकी टेक्निक है, जो तब आपका फुटवर्क है, जो तब आप बॉल कैसे मूव कर रहे हो, वो सारा मैटर करता है कि आप कितना स्ट्रेट रह रहे हो ठीक है, कितनी आप बॉल मूव, कितनी बॉल आप ड्रैग कर रहे हो ठीक है, जितनी ज्यादा बॉल ड्रैग करोगे अपने, जितनी बॉल आप उतना, लाइक गोलकीपर के लिए जज करना मुश्किल है क्योंकि स्कोर मैं अगर डी से लेके आगे 1 मीटर बॉल ड्रैग कर रहा हूँ ठीक है, तो
हाँ जी जरूर
आगे गोलकीपर के लिए उतना ही रिएक्शन करने के लिए ज्यादा टाइम है राइट, अगर मैं सपोज वही बॉल जो ड्रैग कर रहा हूँ, बॉल जब मैंने हॉकिंग शॉट के ऊपर ली है वो मैं 1.5 मीटर 1.5 मीटर ड्रैग कर रहा हूँ, तो गोलकीपर के लिए जज करना ही मुश्किल है राइट, क्योंकि मैं
जरूर
बॉल के साथ ही बहुत वो
जरूर।
कर रहा हूँ,
हाँ जी
तो वो मैटर करता है कि आप जो टेक्निक, स्मॉल स्मॉल टेक्निक है, आप कितनी बॉल ट्रिपल कर रहे हैं एंड आप कैसे जर्क दे रहे हो, कैसे आप फेंक दे रहे हो गोलकीपर के ऊपर, वो सारा मैटर करता है, लेकिन
जरूर
वो पीछे से कुछ मैटर नहीं करता कि आप कैसे आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो ठीक है, अभी आप चाहे 1 स्टेप से आ जाओ चाहे आप 4 स्टेप लेके आओ, वो मैटर नहीं करता।
जरूर जरूर। और ये जो आपने बोला, ये जो जो जर्क का है और जो ये जो फोर्स हम बॉल के पीछे डालते हैं, तो वो बॉडी वेट जो है वो कैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में, मतलब किस तरह से वो फोर्स, क्योंकि स्पीड और स्पीड भी काफी मैटर रखता है एक्यूरेसी के साथ में ड्रैग फ्लिक में, तो वो मैं बोल रहा हूँ स्पीड भी काफी मैटर रखता है। जैसे आपने बोला जर्क जो यूज करते हैं वो फोर्स के लिए, तो
हाँ जी हाँ
बॉडी वेट जो जो
जी
ट्रांसफर है वो उसका उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं, बॉडी वेट कैसे हम बॉल के पीछे में भी ट्रांसफर करते हैं ताकि वो उसमें ट्रांसलेट हो, उसकी स्पीड काफी रहे।
सर, वो ऐसे जब आप जर्क मारेंगे ऑर्डिनरी बॉल के ऊपर ही बॉल के साथ ही जाएगी ठीक है,
जरूर
तो उसमें ऐसे होगा कि आप जब जैसे आपने बॉल लिया है ठीक है, मुझे पता है मैंने अब बॉल यहाँ पे रिलीज करनी है ठीक है, ये मेरा
जरूर
पॉइंट है, तो
जरूर
ऑर्डिनरी बॉडी मेरे ट्रेनिंग के साथ ऐसे ही अडाप्ट करनी स्टार्ट कर देती है ना,
जरूर
तो
जरूर
ऐसे में जब लास्ट में मेरे पास जर्क मारा ऑटोमेटिकली एंगल मेरा, एंगल और जर्क का टोटली डिफरेंट है, जो
अच्छा
एंगल है आपने लेना है वो हॉकी और ठीक है, वो आपका कोऑर्डिनेशन है ठीक है, कैसे आप बॉल ड्राई कर रहे हो ठीक है ओके, जो राइट स्टिक जैसे मैं राइट राइट डाउन मार रहा हूँ स्टिक साइड लो मारना मुझे ठीक है,
हाँ जी
तो बॉल मैं वैसे ही ड्राई करूंगा उसी हिसाब से, मैं स्टेप लूंगा अपना ठीक है, मेरा फुटवर्क भी उसी हिसाब से हुआ,
हाँ
देन अकॉर्डिंगली मेरी बॉडी डेप्थ जो आएगा अकॉर्डिंगली अपने आप आ जाएगा वो,
अच्छा।
क्योंकि मैंने सोचा होगा कि उसी को हमने ट्रेनिंग की हुई है कि मैंने किस एंगल से मारना, मुझे पता है कि मेरी बॉल कहाँ पे मूव करना
जरूर
है और कहाँ पे मुझे मेरा स्टेप कैसे आएगा,
जरूर
तो कहाँ पे मुझे जट मारना है ना, वो सारा
जरूर
ऑर्गेनल ट्रेनिंग के साथ ही होगा।
जरूर। ये जस्ट एंगल का, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समझा सकते हैं किस तरह से आपका, समझ लीजिए ग्रिप चेंज होता है ये एंगल के लिए, किस तरह से आप डिसाइड करते हैं अगर अगर आपने एरियल फ्लिक मारना है और आपने ग्राउंडेड फ्लिक मारनी है तो उस हिसाब में कैसे अंतर रहता है, थोड़ा कुछ बता सकते हैं।
सिर्फ ऐसे है कि ग्रिप का कोई चेंज नहीं होगा उसमें, सिर्फ
अच्छा
हॉकी के थोड़ा एंगल चेंज हुआ, अगर
अच्छा
स्पोर्ट मुझे ड्रैग भी मैं उतने ही करूंगा, अगर थोड़ा मुझे मुझे हाई मारना है तो एट द जब मैं बॉल रिलीज करूंगा तब तो मुझे एट द एंड थोड़ा ब्लेड थोड़ा ओपन करना पड़ेगा ठीक
जरूर
है,
जरूर
और जब मुझे पता है मुझे नीचे मारनी है राइट डाउन लेफ्ट डाउन मारनी है ग्राउंड लेवल पे मारनी है, तो उस हिसाब से मुझे स्ट्रिक जो शार्प सीधा रखना पड़ेगा स्टिक को, उसको ओपन ही करना होगा उसको।
जरूर जरूर। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, मैंने एक डॉजिंग का भी हमने देखा है, मतलब लोग क्या करते हैं लेफ्ट देख के राइट मारना, राइट देख के थोड़ा, ताकि आप गोलकीपर को बीट कर सके, तो वो तो ऑब्वियस है कि मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस से भी आता है, लेकिन उसके बारे में प्रोसेस में कुछ चेंज है किस, और उस समझा सकते हैं किस तरह से एक सक्सेसफुली आदमी उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है डॉज कर कर एक, मतलब अगर ड्रैग फ्लिक मारना है आपने
उसको, आप तो बॉल को उस हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा, तो उसमें उसमें भी डिफरेंस है राइट। अगर उसमें क्या कर रहे हैं बॉल सीधी, जैसे मैंने राइट आर्म मार लिया है तो मैं तीन ड्रैग कर रहा हूँ, अगर लेफ्ट आर्म मार अभी मैं बॉल तीन सेम ट्रेवल कर रहा हूँ, स्ट्रेट सीधी खींच रहा हूँ ठीक है।
अच्छा जी,
तो लेकिन क्या कर रहे हैं जब वो बॉल लीव कर रही है ना एंड पे, तो वो उसमें जज ये थोड़ा एंगल उसमें दे रहे हैं, उसमें जज करना मुश्किल होता है ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मैं करता हूँ, मेरा ऐसे ही मैं थोड़ी जैसे मुझे राइट आर्म मारना थोड़ा बॉल ऑपोजिट खींचना पड़ेगा ठीक है, तो मुझे राइट आर्म स्टिक से वो मारना है तो बॉल में पहले बॉल पर लेफ्ट में खींचूंगा।
अच्छा जी,
उधर खींच के फिर जब जब मुझे रिलीज करना होगा तब मैं लास्ट में जर्क मारूंगा राइट डाउन।
ओके जी, ओके
हाँ जी। अगर मुझे वही अगर मुझे राइट में अगर बॉल पर लेफ्ट में मारना तो बॉल पहले बॉल पर राइट में करूंगा ड्राई करूंगा, जब मुझे बॉल छोड़ना होगा रिलीज करना होगा एंड देन मुझे जर्क मार के अपना एंगल चेंज करना,
एंगल चेंज करना। अच्छा अच्छा, तो अगर एक तो थोड़ा सा वेरिएशन की बात करते हैं कि किस कितनी की क्या क्या मतलब वेरिएशन जनरली आप अपने अपने गेम के बारे में बताएं किस तरह के वेरिएशन आप करते हैं ड्रैग फ्लिकिंग में, और अगर वेरिएशन करते हैं तो क्या उसमें ग्रिप का भी कुछ चेंज होता है और उसके बारे में कुछ बता सकते हैं।
मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यही करते हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज सेम रहे कि मैं जैसे ड्रैग मार रहा हूँ ठीक है। अगर सपोज मुझे अगर हमने वेरिएशन करना है ना तो ऑब्वियसली मुझे उनको ये शो करना पड़ेगा कि मैं ड्रैग मार रहा हूँ ना।
अच्छा,
और ये तो नहीं मतलब जैसे नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो उनको ऑटोमेटिकली पता चलेगी, ऑपोनेंट भी एनालाइज करके आते हैं कि कौन क्या कर रहा है ना।
जरूर जरूर,
तो फिर अकॉर्डिंगली हम अपना देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं होने देते और ग्रिप भी बिल्कुल चेंज नहीं होता।
अच्छा, एक चीज मैं बात करूंगा किस तरह की स्टडी आप ओपोनेंट गोलकीपर पे करते हैं, क्या पहले से देख के रखते हैं कि वो लेफ्ट ज्यादा कूदता है राइट ज्यादा कूदता है, किस तरह की स्टडी आप गोलकीपर पे ताकि आप उसके लिए तैयार रहे उसको बीट करने के लिए।
कोच जो है मेरे मीटिंग जो होती है उसमें यही हम देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट रेशन जो पहले बुक कर रहा है ना, फर्स्ट रेशन सीधा आ रहा है जहाँ ब्लॉक करके आ रहा है जहाँ डबल ब्लॉक करके क्या करके करके है ना। और उसके बाद ये भी होता है कि बॉडी पर भी अगर राइट में ज्यादा ऑफसेट हो रहा है या लेफ्ट में ऑफसेट हो रहा है ना, फिर बाद में हैंड उसके काट लेते हैं बॉल पर, कुछ लोग ऐसे होते हैं हैंड अपने ऊपर रखते हैं ना हाई बॉल के लिए और नीचे अपना लेग यूज करते हैं, कुछ लोग अपने हैंड नीचे रखते हैं ठीक है। तो हर वो सारी चीजें हम एनालाइज करके देखते हैं क्या करना है क्या है, और जो बॉल पर नीचे हाथ रखता है वो लगता है कि वो जो नीचे वाली बॉल में हॉकी स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा है ना, वो तो ऐसा भी होता है कुछ बॉल पर सिक्स हेड जो एडिंग बॉल के लिए वीक होते हैं जहाँ कुछ सिक्स हेड लोज वीक होते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें वो एंगल भी करना पड़ता है।
अच्छा अच्छा, तो
अगर बॉल कोई ऊपर राइट में ज्यादा ऑफसेट हो रहा है तो लेफ्ट में ओपन हो जाता है पूरा।
जरूर जरूर, एक चीज और इसमें थी टेक्निक वाली बात पर बोल रहा था, वो हेड पोजीशन कैसे कैसे मतलब हम मैंने देखा है कि हालांकि हेड पोजीशन काफी हद तक नीचे ही रहता है, एम देखने देख मतलब वो तो शायद एकदम एंड में जब बॉल निकल गई है तभी आप सर ऊंचा कर पाते हैं, तो हेड पोजीशन कैसे रखना होता है एक परफेक्ट ड्रैग फ्लिक के लिए उसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
ड्रैग फ्लिक में यही है कि आप बॉल को वॉच कीजिए जो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब आप पहले बॉल देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉल के ऊपर चला जाता है, बॉल के ऊपर चला जाता है ना, तो हम कोशिश यही करते हैं जो मेरे जो मैं सोचता हूँ कि जो जब आपने बॉल आपकी हॉकी में साथ आ गई तो आप बॉल को देखिए जहाँ जहाँ जब तक बॉल एंड नहीं होगी आप बॉल को देखते रहिए अपना। और नॉर्मली क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं बॉल अभी आपकी हॉकी के ऊपर होती है लेकिन आप ऊपर देख रहे हो ना पहले ऊपर जल्दी उठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है बॉल एंगल मिस कर देता है कभी कभी, बॉल ऊपर उठ जाता है ज्यादा। अच्छा। जब आप ऊपर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हॉकी का जो हॉकी का एंगल जो वो ओपन होगा ना, तो जब ऊपर देखोगे ऊपर उठोगे तो एंगल आपका चेंज होगा, हॉकी का आपका शार्प ऊपर हो जाएगा ऊपर से बॉल जाएगा, तो उसमें यही है कि आप देखिए ज्यादा बेटर है बॉल के ऊपर फोकस रहना चाहिए। बॉल जब ऐसा है कि आप बॉल को ही देखते रहिए ऐसे है बॉल में जा रही है तब भी बॉल को देखते रहिए, ये नॉर्मल एक थ्योरी है कि जितना आपकी और आपका फोकस उसी के ऊपर रहेगा।
जरूर, एक एक चीज मैं पूछना चाहूंगा किस 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 तरह के बॉडी मसल्स ज्यादा यूज होते हैं एक ड्रैग फ्लिकर के लिए एक फ्लिक करने में, और आप किस तरह के एक्सरसाइजेस करते हो उन मसल्स को तैयार करने के लिए?
पहले तो कोर जितने भी है ना आपके लाइक एक रोटेशन होगी, फिर कोर जितना भी आपका पेट और बैक जितनी स्ट्रांग होगी, फिर ग्रोइंग होगी आपके हैमस्ट्रिंग होंगे, ऑलमोस्ट ऐसा है कि रेस्ट के सारे मसल यूज होते हैं आपके। अच्छा। और अगर एक मसल आपका वीक है तो वो एक दूसरे मसल को इफेक्ट करेगा। कोर अगर मेरे लाइक बैक मेरी वीक है, बैक से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बैक थोड़ी देर में क्लीन होगा, ठीक है। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग वीक है, एमसी वीक पहले आपके शोल्डरों में, फिर बीच शोल्डरों में, फिर बैक के ऊपर लोड आएगा, तो ये कि वो आपका था प्रॉपर जो बैक साइड, बैक से लेके ग्लूट लेके फिर एमसी, तीनों आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए, फिर लोडिए ना। तो आई फील इनके ऊपर बैलेंस करना चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए ना, जब भी आप ड्रैक्टली कर रहे हैं प्रॉपर आपकी रिकवरी टाइम होना चाहिए उसके बीच।
जरूर। एक चीज और एक बात है कि मुझे जहां तक नॉलेज है आप शायद कम से कम 6 फीट तो है, शायद 6 फीट या 6 फीट से ऊपर ही होंगे आप, तो
6'3"
है तो काफी ज्यादा है। तो ये ड्रैग फ्लिक एक फ्लिकर के लिए हाइट और फिजिकलिटी का कितना है, क्योंकि एक रीच का फिर एक ये फैक्टर आ जाता है। तो आप जैसे 6'3" है, लेकिन क्या एक कम हाइट का बंदा भी अच्छा ड्रैग फ्लिकर हो सकता है, या उसका कितना बड़ा रोल होता है हाइट फिजिकलिटी का?
कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसे मुझे डायरेक्टली आई फील कि मुझे हाइट का एडवांटेज, उसमें डिसएडवांटेज भी है।
अच्छा।
एडवांटेज ये है कि मैं ज्यादा एरिया कवर कर रहा हूँ, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इंजरी के चांसेस ज्यादा है, तो मुझे उतना ही ज्यादा झुकना पड़ रहा है, उतना ही ज्यादा फिर अपने मसल पर काम करना पड़ रहा है ना।
जरूर।
जो छोटी हाइट का आदमी है उसको उतना लाइक उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है वो उसकी ज्यादा हो गई है ना।
जरूर।
इस आदमी से
जरूर।
तो जैसे मेरा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे इंजरी आती है। लेकिन छोटे आदमी के जो अच्छा होता है और बैलेंस अच्छा होता है उनका, तो उसके उनको इंजरी कम है, लेकिन उनको डिसएडवांटेज अच्छे ड्रैकिंग कर रहे हैं जो छोटे राइट के, ऐसा नहीं है।
जरूर जरूर।
कोई भी कर सकता है।
जरूर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने लाई बात, तो उससे मैं एक बात पूछना चाहूँ, जब आप बॉल रिलीज होती है, मतलब आपने बोला शाफ्ट पे उठाया उसे रिलीज करा, तो वो बॉल वो उसके कोई टेक्निक है क्या कि सेंटर ग्रेविटी से कितना प्यास रखना है, और क्या उसको सेंटर ग्रेविटी के नीचे रखना है या उसको उसके आगे रखना है ताकि ज्यादा वेट ट्रांसफर हो सके, ऐसा कुछ टेक्निक का है क्या?
ऐसे है कि बॉल जो बॉल है आपकी ज्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मिस करेंगे, और ज्यादा क्लोज भी होनी चाहिए। अगर ज्यादा क्लोज होगा दूर आपके, तो आपके जो आम है वो बीच में कभी नीचे लगेंगे जाते रहते हैं, तो ऐसे ही सेंटर आप एक कोऑर्डिनेशन है और एक प्रॉपर स्पेस कैसे बोलूँ, जैसे बैलेंस होना चाहिए, इतना दूर भी नहीं बॉल चाहिए। अच्छा। और आप बोल सेंटर की रहेगी बॉल हमेशा भी आपके सामने रहेगी बॉल।
अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मेंटल एस्पेक्ट पे मैं आपको पूछूंगा, आप ड्रैग फ्लिक करते हो तो क्या सर आप विजुअलाइजेशन मेथड का भी यूज करते हो? कैसे विजुअलाइज करते हो, कभी किस टीम के खिलाफ किस तरह से ड्रैग फ्लिक लूंगा, या मेरा परफेक्ट ड्रैग फ्लिक कैसे जाएगा, क्या विजुअलाइजेशन का आप यूज करते हो और कैसे करते हो? अगर करते हो तो फायदा क्या होता है?
हाँ सर,
जरूर।
जैसे 3-4 ट्रेनिंग सेशन पहले है ना,
जरूर।
तो जो शार्पनेस होती है हम उसी हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं कि यहाँ पे एंगल पर्सनली फील होता है ना, नहीं मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरा एंगल है कि यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो मैं उसके भी ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ ना। उसके बाद 2-3 पहले हम ऐसे ही नॉर्मल अपना पर्सनली अपनी वीडियो देखते हैं उनकी, उसकी ओपोनेंट की, फिर विजुअलाइजेशन जो होती है वो करते हैं, रात को भी कैसा फील हो रहा है नॉर्मल करके वो सारा। फिर जो जैसे कल मैच जो आज हमारी ट्रेनिंग सेशन होगा ना, जो भी आज, उसमें कोशिश करते हैं जो मैंने कल रिविजन किया है या एक दूसरे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो आज ट्रेनिंग में थोड़ी ट्रेनिंग करूँ उसकी,
जरूर
उसका ट्रेनिंग करके फिर कल मैं मैच में उसको करूँगा,
रिजल्ट आएगा। जरूर सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि अच्छा बुरा तो सबके साथ होता ही रहता है, बड़े खिलाड़ी भी कभी कभी एक दो ड्रैग फ्लिक मिस हो गए, प्रेशर भी काफी काफी रहता है, तो एक मैच कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में किस तरह के थॉट्स आते हैं और आप किस तरह से उसको फाइट करते हैं, और उससे अगर तीसरा अगर ड्रैग फ्लिक आ रहा है उसे कन्वर्ट करना है तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि पिछले 2 बार मिस से मैं मतलब वो इफेक्ट ना हो जाए, ये सही से चले जाए, उस मेंटल थॉट के बारे में थोड़ा सा।
ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ ऐसा, और तब हमारे मन में ये होता है कि यार नॉर्मल जो एंगल है एक बेसिक, आप बेसिक्स के ऊपर आ जाओ तब ना, कि आपको बेसिक क्या है,
जरूर
एक बार लग गया दो बार लग गई, तो ऐसा कि बेसिस के ऊपर आओ, जो आपका एंगल है उसके ऊपर आप अपना एग्जीक्यूट करो
जरूर।
और रिजल्ट आएगा। और ऑफ कोर्स लाइक आप ह्यूमन हो, ह्यूमन हर कोई गलती करता है, और ऐसा नहीं कि अगर आप टीम की बुरा चाहते हो, ऐसे है कि स्पोर्ट्स है, आप सारी उम्र आप कुछ करते आ रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो। स्पोर्ट्स ही ऐसी है कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते
जरूर,
और कभी भी परफेक्ट होगी या ऐसा होगा नहीं कि कोई भी मूवमेंट अभी परफेक्ट हुई या मैच के परफेक्ट हुआ हो ना, ऑफकोर्स आप गलतियां करते हो, लेकिन उसमें यह है कि आप जो आप बेसिक्स हैं आपको उसके ऊपर काम कीजिए, उसके बाद फिर अगर आपकी गलती हो रही है तो बेसिक्स के ऊपर आए, अपना जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसके ऊपर रहिए, ज्यादा पास के बारे में मत सोचो कि मैंने ये किया था, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अफेक्ट करेगी, मेंटली आपको अफेक्ट करेगी। तो प्रेजेंट के आप उस मूवमेंट के बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो एंगल है, जो आपका एग्जीक्यूशन जो आपका है उसको आप अच्छे से कर लो, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है।
जरूर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, इससे जुड़ा हुआ है कि मैच सिचुएशन में अगर हम अगर डाइंग मिनट्स की बात करें, लास्ट के कुछ सेकेंड्स रह गए, मिनट्स रह गए, ऐसे में अगर पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, आदमी थका भी थोड़ा रहता है, प्रेशर भी काफी रहता है, लेकिन और प्रेशर के अंडर में जनरली होता क्या है कि बॉडी को अपना रिकलेक्ट करना, काम रखना भी काफी मुश्किल होता है, माइंड को भी, उस सिचुएशन में कैसा मेंटल थॉट प्रोसेस रहता है, क्या आप उस समय के ड्रैग फ्लिक के लिए आप किस तरह से अपने मेंटली को मतलब अपना तैयारी रखते हो कि आपका बेस्ट ही निकले, और थॉट प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं प्रेशर।
मुझे अच्छा लगता है वैसे जो इस सिचुएशन में जो आते हैं जो डाइंग मोमेंट्स में जितने भी वो कुछ आता है, तो आई लाइक दैट प्रेशर ठीक है, डाइंग में 20 कॉर्नर लेने का चांस मिल रहा है ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ चीज को ठीक है, तो लेकिन उसमें मेंटल प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ना कि आप कॉन्फिडेंट कितने कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों के उसका रिजल्ट आएगा ठीक है। कभी कभी होता है कि आप कॉन्फिडेंट भी हो लेने के, लेकिन फिर भी आपका ऑफ द एंगल मार रहे हो ठीक है, ऑफ द टारगेट मार रहे हो। अब रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहे थे, हम 4-2 से हार रहे हैं, और 4-3 मैंने 20 कॉर्नर पे गोल किया, और फिर हमें 20 कॉर्नर मिला, मैंने ऑफ टारगेट कर दिया वो ठीक है। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन ऐसे था कि वो नहीं हुआ मैच सिचुएशन, कभी ऐसे था जब गलती करती हूँ ना, मैंने सीखा उस गलती से। लेकिन आपका मेंटल प्रोसेस ये कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आप इवन इफ ओवर कॉन्फिडेंट आपको अपने को भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो ना, और उसके बाद ये है कि आप अपना इतनी देर से जो ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, आपने प्रिपेयर कर किया हुआ आपने ना भी, मैंने कल आज की मैच मैंने ये करना है वो करना है जो भी हम सोचा था ना, तो उसका एक अच्छा चांस होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी ये कि जो आपका बेसिक स्किल है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन कोच से आ रही है, जैसे क्रिस से एलो हमारा टीम का मैटिंग और होता है ना, तो जो 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 आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है एंगल के लिए, तो मेरे को वो एंगल बताता है क्रिस एलो की ये एंगल पे मारना है, तो मुझे ठीक है अभी मेरा सिर्फ काम इतना है कि मुझे अपने टारगेट के ऊपर काम करना है, मुझे उसने बोला कि राइट आर्म मारना, मुझे राइट आर्म मारना, रिजल्ट आए ना आए उसकी है ना, लेकिन मेरा काम क्या है कि मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, एंगल राइट होना चाहिए मेरा ठीक है। अगर कभी कभी लक भी बहुत बड़ी चीज है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो और लक आपके साथ है, तो मारते कहीं और जाती कहीं और
सर, एक बात कह रहा हूँ, जो आप शुरू में आते हो तो कम पता रहता है ठीक है, लंबा कैरियर जब हो जाता है तो आपके आपके बारे में भी लोगों को काफी पता होगा, ओपोजिशन को, आप भी ओपोजिशन को काफी अच्छी तरह से जान जाते हो बड़े बड़े कंपटीशन में स्पेशली की वो, तो जब एनालिसिस होती है, जब आप अपनी ट्रैक स्लिप की एनालिसिस करते हो या ओपोजिशन टीम की एनालिसिस करते हो, मेन फोकस एरिया क्या रहता है, आप किन चीजों को देखते हो ताकि आपकी आप नेक्स्ट मैच में जब ट्रैक स्लिप हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सको। सॉरी अभी आ रही है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो जब आप अपनी ड्रैग फ्लिक की एनालिसिस करते हो और ओपोजिशन की एनालिसिस करते हो, तो उसमें मेन फोकस एरिया ऐसा क्या रहता है, किन चीजों पे मेन ध्यान रहता है ताकि नेक्स्ट जब आपका मैच हो तो ड्रैग फ्लिक आप कन्वर्ट कर सको, उस हिसाब एनालिसिस के मेन फोकस एरियाज क्या रहता है उस पर बोल सकते हो।
जो मैंने बोला पहले है ना कि आप रिलीज कैसे कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो ना, एंगल कब देना है नहीं देना, ये बेसिक स्किल है जो आपके, ये डायरेक्टली वो नहीं है कि आप बहुत एडवांस, ऑफकोर्स मैं एडवांस हूँ, लेकिन एट द एंड जब आपके बेसिक अच्छे होंगे, जब फाउंडेशन अच्छा होगा आपका, तभी आप ऊपर से अच्छे
रखोगे ना।
तो वैसे ही अगर हम ड्रैग फ्लिक में भी अपने बेसिक अच्छे करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं पहले सोचेंगे मैं यार नहीं मुझे जूम चाहिए, जूम कर मुझे ड्रैग फ्लिक करना पड़ेगा, और ड्रैग फ्लिक करने के लिए आपको बेसिक स्किल भी उतराना पड़ेगा राइट। वो चीजें ऐसे है कि आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको फोकस करना पड़ेगा उसके लिए, तो तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर ऐसा भी है कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं और आप ज्यादा सोच भी रहे हैं कि नहीं मुझे करना है, जस्ट रिलैक्स रहो अपना और जितना रह सकते हो, और बस अपनी जो टेक्निक है उसके ऊपर काम किया जाए ज्यादा अच्छा।
एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कि आपकी ड्रैग फ्लिकिंग का आपका कोई गुरु या आपका कोई इंस्पिरेशन है या ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप ड्रैग फ्लिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछूं तो आपने अगर किसी से कुछ जो सबसे बड़ी सीख या और अपने करियर में ही सबसे बड़ी सीख अभी तक आपको ड्रैग फ्लिकिंग के मामले में क्या मिली हो, इस पर कुछ बोल सकते हो?
उस टीम के लिए पैदा करना है, हमें ऑपरेट करके हम नहीं उसको शुरू से गुजारते रहे हैं। उन्होंने मेरे को अच्छे से पूरा जो मेरा टेक्निक स्टाइल है वो सारा उनकी तरह ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरा उनके अंडर ट्रेनिंग की है तो टेक्निक स्टाइल मेरा बिल्कुल उनका है, मेरी अनुभव कह में जाओ तो मेरी मैं ड्रेक्टर ना बनता है ना, तो कोर्स यही था कि जितना मैम ट्रेनिंग करेंगे उतना अच्छा है, वो ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी प्रोफेशन होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हम भी अभी रिजल्ट करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में ये नॉर्मली ये है कि आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो वो कम ही पड़ेगी आपकी।
जरूर जरूर। हाँ, एक एक ये कह रहा था कि कन्वर्जन रेट जो है ड्रैग फ्लिक पेनल्टी कॉर्नर्स का वैसे भी अगर देखेंगे हिस्टोरिकली थोड़ा डाउन कम होते गया है उसका, ऑब्वियसली लोग बोलते हैं कि अभी हेड गियर्स भी आ गए हैं और रशर जो है वो काफी ब्रेव भी हो गए हैं, तो आप तो ये डिफेंसिव इसको ही बोलेंगे या और भी कुछ कारण आपको लगता है कि कन्वर्जन रेट अभी कम जो होते जा रहा है ड्रैग पेनल्टी कॉर्नर में उस पर?
आजकल जो डिफेंस में बहुत ज्यादा ब्रेन हो गई है ना, जैसे मैंने बोला फर्स्ट हो गया, फिर आपका जो पोस्टमैन खड़ा हुआ है वो, फिर आपका जो सेकंड जो लेफ्ट पे आ रहा है ना सेकंड मिशन, वो लाइक इतना ज्यादा वो होता है कि तीन आदमी आपका एक एंगल ही कवर कर रहे हैं, आप लेफ्ट में मार ही नहीं सकते लेफ्ट में, ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर बॉल स्पीड जो बॉल पुश कर रहा है वो बॉल अच्छी होगी, फिर बॉल अच्छी स्टॉप होना चाहिए, फिर आपको फर्स्ट से बीट करोगे तो जाके आप लेफ्ट में मार सकते हो, ठीक है। अपने लाइक क्या होता है तीन आदमी आपके लेफ्ट एंगल में खड़े हुए हैं बॉल पर राइट में खड़ा है, कहाँ मार बोल रहे थे राइट मारने की चांस ही नहीं है, जो कन्वर्जन रेट जो नॉर्मल तीन चार पांच साल से सुनता आ रहा हूँ ये है कि 33% होना चाहिए, ठीक है, अगर आपका 33% आपका रिजल्ट है पेनल्टी कॉर्नर का तो आपका बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर है।
जरूर जरूर,
ठीक है। लास्ट में पिछले लाइक एक दो साल से जब मैं इंजरी के बाद आया हूँ तब से तो देखिए अब तो आए थे हमारे टीम का रिजल्ट बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर में भी अबाउट 50% हुआ,
लेकिन क्योंकि कन्वर्जन रेट अभी थोड़ा कम है तो आपको ऐसा लगता है कि ड्रैग फ्लिक की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी होगी आने वाले टाइम में? वैसे तो ड्रैग फ्लिक काफी बड़ा एलिमेंट रहा है हॉकी में, मतलब जब से आया है तब से, पर
मुझे लगता है कि ड्रैग फ्लिक अभी हो सकता है, मैं कुछ बोल सकता लेकिन ड्रैग फ्लिक एक काफी बड़ा लेकिन अगर आप ब्रैकेट अच्छे हैं ग्राउंड की अच्छे नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, बैलेंस होना चाहिए, अच्छे हैं ऑन द फील्ड भी आप अच्छे प्लेयर होने चाहिए तभी आप ग्राउंड पे खेल सकते हैं, अदरवाइज लाइक अकेला काम कर रहे हो लेकिन ऑन द फील्ड आप जब नॉर्मल गेम में आप बिल्कुल भी कुछ होने रहा ना जैसे आप वीक हैं तो वो भी बैलेंस अच्छा नहीं रहता। नॉर्मल ये है कि जब आप अंदर खेल लोगे तो पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा तभी आप मिलेगा, जब अंदर खेलेंगे तो पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा तो फिर कैसे करोगे?
हाँ जरूर।
सो दैट वॉज रुपिंदर पाल सिंह एक्सप्लेनिंग द आर्ट ऑफ ट्रैक फ्लिकिंग टू अस। होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फर्स्ट पोस्ट मास्टर क्लास। अंटिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।